ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद् भागवत महापुराण सप्तम स्कंद अध्याय 11 श्लोक 21। शमोदम तपोशोचम शमोदम तपोशोचम संतोष शांतिरार्जवम संतोष शांतिरार्जवम शमोदम तपस्वचम संतोष शांतिरार्जवम ज्ञानम दयाचितात्मत्वम ज्ञानम दयाचितात्मत्वम सत्यं च ब्रह्मलक्षणम् सत्यं च ब्रह्मलक्षणम् शमोदम तपस्वचम् संतोष शांतिरार्जवम् ज्ञानं दयाच्युतात्मत्वम् सत्यं च ब्रह्मलक्षणम् शमा मन का संयम दमा इंद्रिय संयम तप तपस्या स्वच्छम पवित्रता संतोष तुष्टि शांति क्षमाशीलता क्रोध से शुद्ध न होना आर्जवम सरलता ज्ञानम ज्ञान दया दया आचितात्मत्वम आपने को ईश्वर के नित्य दास मानना सत्यम सत्य च भी ब्रह्म लक्षणम ब्राह्मण के लक्षण अनुवाद ब्राह्मण के लक्षण इस प्रकार है मन का संयम इंद्रिय संयम तपस्या पवित्रता संतोष क्षमाशीलता सरलता ज्ञान दया सत्य तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण। दोहराइए ब्राह्मण के लक्षण इस प्रकार है मन का संयम इंद्रिय का संयम तपस्या पवित्रता, संतोष, क्षमाशीलता, सरलता, ज्ञान, दया, सत्य तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण। तात्पर्य डिवाइन ग्रेजी श्री भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा, शिल प्रभुपाद की वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, वान ग्रस्त, वान प्रस्त तथा संन्यास के लक्षणों का वर्णन हुआ है। अंतिम लक्ष्य तो अच्युतात्मत्वम सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का, कृष्ण या विष्णु के विषय में सोचना है। कृष्ण भावनामृत में उन्नति करने के लिए मनुष्य को उपयुक्त गुणों से युक्त ब्राह्मण बनना होता है। सच्चिदानंद रूपाय सोत्पत्त्यादि हेतविता पुत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् यम प्रव्रजंत मनुपेत मुपेत कृत्यम द्वैपायनो विराकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरो विनेदोस तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति निष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहमन्दे परमानंदमाधवम्। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनुभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददान्ति स्वापदान्तिकं। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गुरुतिसे नमः। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवि प्रणमामि हरि प्रिय वांचा कल्पतरुभ्यः कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
अभियान को बंद करना।
पहले मैं वृंदावन का ही भक्त हूं। लगभग 40 साल पहले वृंदावन ज्वाइंट किया था मैंने। 1980 में होगा, 1980-82 में। उस समय अविद्यापति भक्ति भृंग गोविंद महाराज प्रेसिडेंट थे और कदम्बा कानन महाराज जनरल मैनेजर थे और मधुकांत प्रभु भी उस समय थे। अभी पुजारी में रहते, तो वो टेंपल कमांडर भी थे हमारे लिए, तो उस समय एक मैंने नियम लिया था कि ब्रजमंडल में मैं कभी प्रवचन नहीं करूंगा, केवल सुनूंगा, किसी मतलब वैष्णव के चरणों में बैठकर सुनूंगा, सुनने सुनूंगा केवल, प्रवचन अपना यहाँ ब्रजभूमि में करने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसा मेरी अपनी मान्यता थी। लेकिन जीवों की प्रतिज्ञा टिकती नहीं, मेरा भी वही हुआ। कुछ लोगों ने कहा कि आपको करना चाहिए एक बार, और उस समय मेरे समय हिंदी में प्रवचन हुआ नहीं करते थे, और होते तो भी नया भक्त के लिए दो चार भक्तों के लिए एक क्लास होता था, उसका स्थान भी फिक्स नहीं होता था। तो मैं इसीलिए भी नहीं चाहता था कि मैं हिंदी में बोलूं ताकि सुनने वाला कौन होगा। लेकिन आज इतने भक्त देखकर मैं डर गया कि अब मैं क्या बोलूं, सभी लोग तो ब्रजवासी है और मेरे से कई गुना ज्यादा ज्ञान है, और मैं तो जीरो हूं, लेकिन आप लोगों की कृपा से मैं बोलूंगा, प्रभुपाद जी की कृपा से मैं ट्राई करता हूं। अब मेरी हिंदी वैसी हिंदी नहीं रही, क्योंकि मैं ज्यादा अभी महाराष्ट्र में ही प्रचार करता हूं, इसीलिए अब टूटी फूटी हिंदी है मेरी, आप लोग समझ जाएंगे आशा करता हूं। सप्तम स्कंद जब सुना, पहली बार नाम सुना तो मुझे लगा बहुत अच्छा हुआ, नरसिंह भगवान की प्रहलाद महाराज की कथा सुनाऊंगा। लेकिन जब मानव धर्म वर्णाश्रम धर्म की बात आई तो सुनने वाले के लिए भी क्लिष्ट होता है और सुनाने वाले के लिए भी क्लिष्ट होता है। तो मेरा भ्रम निराश हो गया कि अब नरसिंह भगवान के बारे में मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा। जो भी है, राधा रानी की सेवा है, श्रवण कीर्तन जो होता है, कीर्तन मतलब एक ये भी सेवा है। दो ही बातें इसमें, मैं कीर्तन करूंगा मतलब ये कीर्तन नाम संकीर्तन जो गाते हैं वो दूसरा होता है, और ये भी कीर्तन ही इसको माना जाता है प्रवचन को भी। लेकिन ये सेवा है एक श्रवण कीर्तन, तो हृदय से करनी चाहिए। मैं आप हृदय से करूंगा और आप हृदय से सुनना, और मोबाइल को मत रखना, मोबाइल बंद रखना, इतना ही करना बाकी, और सोने का नहीं, बस आप इतना दो ही काम करेंगे, बीच में नहीं उठेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बड़ी कृपा होंगी मेरे ऊपर, क्योंकि ये परेशानी मेरे को हर प्रोग्राम में आती रहती। तो मोबाइल भेजने के बाद बीच में ही उठ जाते हैं, तो कुछ लोग तो दिखाने के लिए आते कि मैं उठ गया हूं, आप देखिए मेरे तरफ। तो यहां तो ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि यह सब ब्रजवासी, मैं बहुत साल से अब इधर नहीं आया। मेरा डायरेक्ट वृंदावन में ज्वाइंट होने का एक और एक कारण था कि महाराष्ट्र में उस समय इस्कॉन का प्रचार केवल बंबई में था, और हम देहात के हैं, हमको कुछ मालूम इस्कॉन क्या है मालूम नहीं था। मैं सीधा पंडरपुर आलंदी में दूसरे सांप्रदाय को ज्वाइंट किया था घर से निकलकर, और इस्कॉन का ज्यादा जानकारी नहीं था, संस्कृत थोड़ा मोड़ा पढ़ेंगे इस विचार से, स्कूल में तो मैं गया नहीं था, लेकिन संस्कृत ऐसा भी पढ़ सकते हैं, इस हिसाब से वृंदावन आया और इस्कॉन में ज्वाइंट कर लिया। तो पुराना भक्त हूं मैं वृंदावन का, लेकिन अभी यहां मुझे जानने वाले बहुत कम लोग है, हमारे जानकार जो मेरे दोस्त थे अब कहां गए पता नहीं। कुछ लोग ही गिने चुने लोग होंगे यहाँ पर जो मेरे को भी जानते हैं कि हाँ ये संतदास है। तो इसमें ये बताया कि ब्राह्मण के लक्षण बताए गए हैं, और ब्राह्मण के लक्षण गीता में कहा गया कि चतुर वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से तस्य कर्ता रम पे मामिधि कर्ता रम। ये चार वर्ण मैंने ही निर्माण किए भगवान ने कहा। चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म कैसे कैसे निर्माण हुए हैं, गुण कर्म विभाग से, गुण और कर्म के आधार पर वो विभाग किया गया है। कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावै प्रभवैर गुणै 18वें अध्याय में भगवत गीता के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्याणाम शूद्राणां च परंतप। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्याणाम शूद्राणां च परंतप कर्माणि, कर्म के आधार पर कर्माणि प्रविभक्तानि विभक्त किए गए, कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाविक, और ये उस समाज का स्वभाव होता है। जिस समाज में हम है वो उस जाति का एक स्वभाव होता है, वो छूटता नहीं जल्दी। स्वभाव जेन कुंती है, स्वभाव छूटता नहीं। अपने आप ही प्रकट होने लगता है स्वभाव जेन कुंती, स्वभाव प्रभाव गुण और गुण गुण के, और वो जो गुण है वहां के अपने प्रकट होते हैं। वो उनको बताना नहीं पड़ता कि मतलब चार वर्ण इस प्रकार के हैं। एक तो एक ब्राह्मण ज्ञान देने वाले होंगे, ज्ञान देने वाला वर्ग एक ब्राह्मण, और क्षत्रिय मिलिट्री सेना, और कृषि गोरक्ष वाणिज्य वैश्य कर्म स्वभाव, खेती करना बिजनेस करना, और गाय की रक्षा करना गोरक्ष, कृषि कृषि माने खेती, वाणिज्य मतलब बिजनेस व्यापार, कृषि गोरक्ष वाणिज्य वैश्य कर्म स्वभाव, और परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रा सोपी, और इन एक लेबर वर्ग होता है। लेबर जो होते हैं मजदूर, उन सब वर्णों की सेवा करते हैं, थोड़ा मोड़ा पेमेंट देने के बाद वो काम करते रहते हैं। तो ये तो व्यवस्था रहेंगी, चाहे जाति व्यवस्था आप मानो चाहे ना मानो, लेकिन ये चार विभाग रहेंगे ही, क्योंकि गुण कर्म विभाग सा गुण के आधार पर है और स्वभाव के आधार पर है। क्योंकि स्वभाव अगर कोई लड़ना छोड़ भी देगा तो छोड़ नहीं सकते। जैसा मराठी संतों ने कहा है, उत्तर वैराटीचा राजा पळता तू का निघालासी झुंजा, हा शास्त्र स्वभाव तुझा झुंजविल तू ते। एक मराठी संत ने कहा एक अर्जुन को वो बताया कि अर्जुन तुम आप बोल रहे मैं लड़ूंगा नहीं, लेकिन लड़ोंगे जरूर, क्योंकि तुम्हारा वो स्वभाव है। उत्तर वैराटीचा राजा मतलब उत्तर जो था विराट नगर का राजा था, राजकुमार था, और महिलाओं में उसने बहुत डींग हाका था कि मैं युद्ध करूंगा और ये कौरव मेरे सामने टिकने वाले नहीं। भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य कर्ण दुशासन ये दुर्योधन हमारे मेरे सामने जीरो, ये सब बोलते हैं लोग, वो क्या मेरे सामने करेगा। ये बच्चा था उत्तर, और उसके पिताजी और ये दूसरे लड़ाई में शिव शर्मा राजे के लड़ाई में चले गए, और ये अकेला बच्चा था, और ये लोग उधर से कौरव सेना उधर से आई, तो ये उत्तर बोला कि हम लड़ेंगे और एक मिनट में सबका सफाया कर दूंगा। और जब सामने गया समुद्र जैसी सेना को देखा तो बोला मैं नहीं लड़ूंगा। अर्जुन बोले माता जीव में तो तुम बहुत बोलने लगे थे, महिलाओं में तो राजमहल में तो बहुत बोल रही थी कि मैं एक में एक सेकंड में ही लड़ाई खत्म कर दूंगा और मेरे जैसा सूरवीर कोई नहीं, अब तुम्हारा क्या हो गया। लेकिन हम तो लड़ेंगे। लेकिन उनको ले जाना नहीं चाहता था। उत्तर बोलता था ये ब्रजनाला क्या लड़ेगा, ये ब्रजनाला मेरा रथ चलाएगा ये लेकिन आप तो वो रथ के ऊपर से कूद गया, नीचे कूद गया, भागने लगा कि मैं नहीं लड़ूंगा। अर्जुन बोले बैठ जाओ, रथ के ऊपर बैठो, तुम नहीं लड़ोगे रथ चलो मैं लड़ूंगा क्योंकि मैं अर्जुन हूं। तो ये इसका ये वर्णन है कि शास्त्र स्वभाव तुझा झुंझविल तुते का मतलब है आपका स्वभाव जो है रहेगा नहीं, आप लड़ेंगे। स्वभाव प्रभव गुण, क्योंकि जिस जात में जन्म होता है जैसे भी जिसका जो गुण होता है वो प्रकट हुए बिना रहता ही नहीं, स्वभाव स्वभाव बन जाता है उसका, वो किए बिना नहीं रह सकता। तो इसमें कहने का मतलब है स्वेरे तेजोर धृतिर दाक्ष विद्ये च आपलायनम, युद्ध में भागना नहीं होता। कुछ लोग तो बोलते कि मैं लड़ूंगा लड़ूंगा और जब लड़ाई का समय आएगा तो बोलेंगे तुम लड़ो हम कपड़े संभालते, वो बात नहीं। तो यहाँ इस श्लोक में ब्राह्मण का लक्षण है वो श्लोक 18वें अध्याय में भी है भगवद गीता के। दूसरे प्रकार के लक्षण है शमो दमो तपो सोचम शांतिरार्जवमेव चम ज्ञानम विज्ञानम अस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम स्वे स्वे कर्म भिरत संसिद्धिम लभते नरा। आपने अपने कार्य में ही आपको अपना अपना काम जो भी ग्रह थाको वने थाको सदा हरि बोले डाको, कोई भी अपना काम है वो करते रहो। स्वे स्वे कर्म भिरत संसिद्धिम लभते नरा, आपने अपने कर्मों में ही मनुष्य को सिद्धि प्राप्त होती है। जैसे उदाहरण दिया कर्मोन्यो ही कर्मोनो ही संसिद्धि मास्तित जनका दया, जनक आदि महाराज को, जनक राजा और राजा थे, सन्यासी नहीं थे लेकिन वो राजकाज करते हुए भी स्वरूप सिद्धि मुक्त हो गए थे, जीवन मुक्त हो गए थे, आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया था अपना कार्य करते हुए भी। इसीलिए कहीं भी रहो कैसे भी तो कहने का मतलब है इस श्लोक में ब्राह्मण के लक्षण बताए। मन का निग्रह पहला है, मन की बहुत जरूरी होती है। शमो दमो तपो सोचे, मैं ये बता रहा हूं आपको, मन को ठीक करना है। शरीर का निर्माता मन है, ध्यान रखना। 11वें स्कंद में कहा गया मनोसृजति वै देहान गुणान कर्मानि चात्मना। आपका देह का निर्माण ब्रह्मा जी नहीं करते, आपका मन करता है। आज का आपका जो मन है वो कल का शरीर है। आगे का शरीर बन जाएगा क्योंकि और कितने शरीर मिलेंगे, आपके जितने विचार है उतने शरीर है। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, आपके जितने शरीर है जितने विचार है उतने शरीर मिलेंगे क्योंकि विचार ही वो बनाने का मटेरियल, बनाने का शरीर बनाने का मटेरियल है विचार। अगर ये विचार ये जो मटेरियल देना आप स्टॉप कर देंगे तो मन कोई शरीर नहीं बनाएगा आपके लिए। किसी बिल्डर को कोई कंस्ट्रक्शन देते हैं और उसको बालू सीमेंट वगैरह सब देते, पैसा देते तो बिल्डिंग बनाते जाता है, लेकिन मटेरियल देना और पैसा देना स्टॉप कर देंगे तो नहीं बनाएगा। बोलेगा अपन को व्यवस्था नहीं, हाँ कुछ दे नहीं रही तो हम क्या। तो वो शरीर बनाने का जो मटेरियल मन को मिलता है वो विचार है। अविचारेनो अविचारेनो कृतो बद्धो विचारेन निवृत्तते। बहुत ध्यान से सुनना, अविचार के कारण बंधन प्राप्त हो गया है और विचार करने से मुक्त हो जाओगे। विचार विचार कौन सा आता तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म सूत्र में लिखा है। हाँ, वो ब्रह्म के बारे में विचार होना चाहिए, भगवान के बारे में विचार होना चाहिए, विचार को बदल देना चाहिए। हम प्रपंच के संसार के बारे में बहुत विचार करते हैं और संसार ये बात बहुत ध्यान देने की है। हमको शरीर हमेशा दिखाई देता है, आत्मा दिखाई नहीं देती। जो वस्तु सत्य है कभी दिखाई नहीं देती, जो सत्य नहीं वो डेली दिखाई देती। भगवान प्रत्यक्ष कभी दिखाई नहीं देते और जगत हमेशा दिखाई देता है। और भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, वो तो दिखाई नहीं देते। जगत हमेशा बदलने वाला है, संस्कृति संस्कृति इति संसार हमेशा डेली बदलता रहता है और फिर भी वो दिखाई देता है। मैं बता रहा हूं, सत्य वस्तु जो होती है वो आपको कभी नहीं बांधेंगी और असत्य वस्तु आपको बांध देंगी, रुलाएंगी, रोना पड़ेगा, बहुत रोना पड़ेगा। ये जगत बहुत रुलाता है और ये सत्य नहीं है। हाँ, हमेशा नष्ट होते रहता है, बदलते रहता है। तो मैं कह रहा था कि मन सृजति वै देहान, मन ही देह का निर्माण करता है। सृजति मतलब देह का निर्माण करता है, क्योंकि कैसे, स्मरण के आधार पर। यम यम वापी स्मरण भाव तेजन तेन ते कले वरम तम तम विति कुंती सदा तद भाव भावित। आपका जैसा स्मरण जैसे विचार होंगे वैसा ही आपका नया शरीर बनते जाता है। इसीलिए और मैं कभी कभी कहता था कि भगवान को प्रार्थना करना चाहिए कि हमको अच्छी बुद्धि दो और ये हमारा भाग्य में अच्छा लिखो कुछ, हमारे भाग्य में अच्छा कुछ लिखा जाए। लेकिन अब मैं ये सोचता हूँ कि भाग्य लिखने वाले दूसरे नहीं, भाग्य तो हम डेली खुद ही लिखते हैं। हमारा भाग्य हम ही लिखते हैं, जो हम कर रहे वो सब लिख रहे, लिखा जा रहा है और वही हमको मिलने वाला है। इसीलिए कैसा लिखना है आप सोच लेना। तो कहने का मतलब मन, मन का मतलब है आप मन के, मन को जीते बिना तो भक्ति में एंट्री होती नहीं। किसी भी संप्रदाय में या किसी भी योग में, ज्ञान योग हो, अष्टांग योग में योग हो, कहीं भी आपको यदि एंट्री करना है, प्रवेश करना है, तो पहले मन चित्त वृत्ति निरोध योग, मन को बदलना पड़ेगा। और मन कैसे बनता है, छांदो के उपनिषद में कहा है मन कैसे बनता है। अन्नमय ही मनस्वम्य प्राणमय आपमय ही प्राणस्तिक। आपका मन अन्न से बनता है और प्राण आपोमय जल से बनता है, पानी से बनता है, ध्यान रखना। अन्नमय ही अन्नमय ही मन सौम्य, सौम्य मतलब ओ आप उद्दालक आरुण्य अपने पुत्र को कहते हैं, श्वेत केतु को कहते ये जो मन है ना अन्न से बन जाता है, इसीलिए कहाँ खाना है कहाँ नहीं खाना है कैसे खाना है वो भी जानना जरूरी है। हाँ कुछ भी खाते रहने से ऐसा ही मन बनते रहता है। सबसे ज्यादा मन बदलना है और सबसे ज्यादा जल्दी मन बदलना है तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा चेतु दर्पण मार्जनम बहु महा दावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादम। चित्त का चित्त रूप दर्पण का मार्जन करना है तो हरिनाम सबसे सबसे अच्छा उपाय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण ये सबसे अच्छा उपाय मन बदलना। और मन में से जो जो भी हमारा शत्रु मित्र ये सब हम लोगों को पहचानना पड़ता है। हमारा मित्र कौन है शत्रु कौन है ये जो विकार है ये जो मन है मन ये वो मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष युक्त। मन ही मनुष्य के बंधन का और मुक्ति का कारण है। जीता हुआ मन मनुष्य का मित्र है और अजीता हुआ जो जीता नहीं गया वो ही शत्रु है। तो शत्रु को ये जो काम क्रोध विकार ये हमारे शत्रु है। अजय शत्रु महाभाव काम रूपम दुरासदम। लेकिन उनको पहचानने के बाद अजिटिच पहचानने के बाद जैसे है वैसे पहचानने के बाद क्योंकि वो बाहर नहीं है हमारे अंदर बैठे हैं विकार बाहर नहीं है हृदय में अंदर बैठ गए। कहां कहां बैठे हैं और क्या क्या काम करते हैं उसको पहचानना चाहिए एजिटिच। आपको मैं न्याय शास्त्र का एक उदाहरण अच्छा लगे तो सुनाता हूं बड़े गौर से सुनना। अन्यता अर्थ नहीं लेना अन्यता गलत अर्थ नहीं लेंगे तो बहुत अच्छा उदाहरण है। प्रधानस्य कुलवधुवत प्रधानस्य कुलवधुवत न्याय शास्त्र का उदाहरण है कल्पना नहीं मेरी अपनी। देहात में एक गांव का एक प्रमुख होता है मुखिया होता है उसको प्रधान कहते हैं सरपंच। एक था सरपंच पहले बोलते थे ना एक राजा था एक रानी थी। इस हिसाब से आपको मैं उदाहरण बहुत समझने के लिए बता रहा हूं एक न्याय शास्त्र का है। एक प्रधान मुखिया था गांव का और उसका एक दोस्त भी था एक मित्र था। मित्र कभी कभी बोलता था तुम्हारी पत्नी जो प्यार दिखाती है ना क्योंकि आगे का शब्द है प्रधानस्य आगे का शब्द क्या है प्रधानस्य कुल वधुवत मतलब उसके पत्नी के संबंध में कथा है उस गांव के मुखिया के पत्नी के संबंध में कथा है। और ये जो मुखिया होते हैं अपने को कुलीन मानते हैं कि हम बहुत ही उच्च कुल के हैं और हमारी खानदान बहुत शाही परिवार है ऐसा माना जाता है और हमारे घर वाले ये सब भी अच्छे हैं कुलीन है किसी के तरफ नहीं देखना किसी से बातचीत नहीं करना वो सब हमारा हम अपने अलग रहते हैं। लेकिन मित्र बोलता था तुम्हारी जो पत्नी है ध्यान रखना कि उदाहरण इसीलिए दिया जा रहा है कि हमारे अंदर ही काम क्रोध अजय शत्रु बैठे हैं और ये आप मन इनको प्रोत्साहित करते रहता है मन इनको चलायमान करता है अब दौड़ाता है तो ये शत्रु अंदर बैठे हैं इसके लिए दिया जा रहा है उदाहरण नहीं तो आप सोचेंगे कि क्या बता रहे, कुछ समझ भी नहीं आ रहा, क्योंकि देखिए यहां पर सम का मतलब है मन का निग्रह करने के लिए कहा गया है, और तो उसको तो पहले पूरा क्लियर करेंगे तो बाद में आगे के पदों में प्रवेश होगा, समो दमो तप, और बाद में तपस्या का उदाहरण भी आएगा, लेकिन इस श्लोक को समझाने के लिए मेरे जैसे मूर्खों को 15-20 दिन लग सकता है, क्योंकि कम बुद्धि है मेरी, मैं क्या कर सकता हूं ऐसी आदत है मेरी एक ही श्लोक पर 15 महीना बोलने की, मूर्ख हूं बुर्बक हूं, कुछ क्या करो, समझ में तो आता नहीं कुछ, लेकिन बोलते रहते, तो जो भी हो तो मित्र बोलता तो तुम्हारी पत्नी ना सामने तो बहुत प्रेम दिखाती है लेकिन वास्तव में वो नहीं है, वो गड़बड़ है, और मैं तेरा मित्र हूं इसीलिए, वास्तव में सही मित्र हूं इसीलिए तुमको समझा रहा हूं, बाद में बहुत बेइज्जती होगी। बोला यार, वो बोला यार तुम हमारे घर में झगड़ा लगाने के लिए आए क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहे तो क्या बता रहा है, हमारी पत्नी पतिव्रता सती साध्वी स्त्री महिला विदुषी है, बहुत ज्ञानी भी है, और तुम मेरे बिना वो रह नहीं सकते, और तुम ऐसा बोलते हो, अगर ये बात फिर दोबारा बोलने लगोगे तो ये मित्रता हमारी कट हो जाएंगी, तुम बाद में मेरे पास आना ही नहीं, लेकिन ये सही मित्र था। हाँ सही मित्र, जो सही मित्र होते हैं ना अपने मित्र को, उपंत निवारी सुपंत चलावा गुण प्रगटई अवगुण दुरावा, उपंत निवारी, अगर गलत मार्ग से मित्र जा रहा है तो कुपंत निवारी उसको वहां से निकाल लेता है, सही मित्र जो होता है ना कुपंत निवारी कुमार्ग से उसको हटा देता है, अच्छा मार्ग पर ले आता है, कुपंत निवारी सुपंत, और अच्छा मार्ग पर ले आता है सुपंत, गुण प्रगट ही, और उसके गुण को बोलता है, हाँ समाज में उनके कोई उनको बोलता है ना अरे तेरा मित्र तो बेकार है, तो बोलता है अरे नहीं हम उनके साथ में रहते बहुत अच्छे आदमी, गुण प्रगट ही गुण का प्रगट करता है, अवगुण दुरावा और अवगुण को ढक लेता है, जाने दो अरे थोड़ा मोड़ा गलती तो किसी से नहीं होता, हंस हाँ थोड़ी मोड़ी गलती तो हर आदमी से होती रहती, तो कुपंत निवारी सुपंत चला। तो बोला मैं तुम्हारा सिद्ध, तो बार बार बोला तुम जो बात बोल रहे ना मेरे को प्रूफ करो, नहीं तो दोबारा ये बात नहीं बोलना, जो तुम जो बोल रहे मेरे को प्रूफ करना, प्रधान से कुलवधुवत। बोला ठीक है, पत्नी को बता देना कि मैं गांव जा रहा हूं, कहीं बाहर जा रहा हूं यात्रा, और मेरे घर चले आना, बता दिया कि मैं गांव जा रहा हूं, तो वो रोने लगे, बिन तुम्हारे जिया नहीं जाता, रोने लगे, ड्रामा करने वाले बहुत ड्रामा करते नहीं बोला 2 दिन तो जा रहा हूं वापस आऊंगा, ये होता है कभी कभी, ऐसा भी होता है। एक दूसरा भी उदाहरण मेरे ध्यान में आया है, कभी कभी हम मुझे लोग बोलते कि प्रभु जी आप शादी नहीं किए, बहुत अच्छा हुआ आप बहुत मजे में, हम शादी करके फंस गए, क्योंकि मैं 40 साल से इस कॉन में हूं तो ब्रह्मचारी को मैंने बहुत देखा है, तो वो बाद में वो पहले तो लाल कपड़ा में थे, बाद में शादी किया तो बाद में आप रोने लगे हैं मेरे पास, लेकिन मेरे मन में ये बात रह गई है मेरे कि इन लोगों ने शादी किया, बाल बच्चे का आनंद ले रहे लेकिन हम ऐसे ही रह गए, बड़ा पछतावा होता है कभी कभी
दिल्ली का लड्डू खाया, मथुरा का पेड़ा खाया, वो भी पस्त है, नहीं खाया वो भी पस्त है। आपको एक उदाहरण सुनाता, एक उदाहरण याद आया, थोड़ा आपकी नींद खुल जाए। एक पत्नी अपने मायके जा रही थी तो पति बोला कब आऊंगी, बोली दो दिन में आ जाऊंगी, जाते ही मेरे को फोन करना, नहीं तो खत लिखना, और नहीं तो तार भेज देना, एसएमएस करना, कुछ भी करो। और रेलवे स्टेशन पर उसको पहुंचाने के लिए गया, और जब जैसा जैसा समय नजदीक आ गया तो बहुत जोर से रोने लगा। पत्नी बोली क्या है आप इतना मर्द है, पुरुष है आप, गंभीर होना चाहिए, लोग क्या सोचेंगे, क्या है, मैं तो दो दिन में आने वाली, इतना रोने रोने क्यों लगे। वो सोचा कि मेरी हृदय की बात वो नहीं समझ रहे। उधर दूसरा प्लेटफार्म पर दूसरा रो रहा था, सोचा कि वो समान धर्म है मेरे से, मिली जुली सरकार, उसके पास जाऊंगा, क्योंकि वो समझ, वो रो रहा है बेचारा, वो दुखी है, और सम दुखी, वो मेरी बात समझ जाएगा, इसलिए वो उसके पास चला गया। बोले आप क्यों रो रहे हैं, उसने वो उल्टा ही इसको पूछा तुम क्यों रो रहे, बोला मेरी पत्नी मायके जा रही। तो उसने पूछा कि आप क्यों रो रहे, बोला मेरी आ रही है। 10-15 दिन मजे में था, मथुरा का पेड़ा खाया वो भी पछताया, नहीं खाया वो भी। तो पहले का प्रधानस्य कुलवदवत, पत्नी रोने लगी, बोला दो दिन में आ जाऊंगा, और चला गया, मित्र के घर चला गया। और दो चार घंटा के बाद मित्र बोला चलो आप तुम्हारे घर जाते हैं, क्योंकि प्रूफ करना है। ऐसा बड़ा घर था, लेकिन ऊपर से छिद्र होते, कुछ घर को तो होता है कि ऊपर से नीचे झांका जा सकता है, सीढ़ी लगा के ऊपर चढ़ गए दोनों मित्र, और ऊपर से नीचे देखा तो वहां एक झूला था, झूला, घर में झूले बांधते हैं लोग, झूला पर आपने प्रियकर को, उस पत्नी ने अपने प्रियकर को फोन पर बुलाया, और दोनों पान खा के झूले पर प्रेम की बातें बोल रहे थे, काम की चर्चा हो रही थी, झूले पर झूल रहे थे, और मित्र ने उसको जिसको कहा था कि प्रूफ करो, उसने बोला देखो नीचे, ये प्रधान गांव के मुखिया को बोला तुम्हारी पत्नी को नीचे देखो, दूसरे प्रियकर को बुलाया है, और उसके साथ कैसी मजा ले रही है। तो उसने नीचे देखा, ऊपर से नीचे देखा, और उसके पत्नी ने भी उनको ऊपर देखा, और बोला चलो मेरे घर आप। चलो मेरे घर, घर में गया तो इसने वो बहुत भड़क गया, बोला मैं अब छोड़ूंगा नहीं उसको, मैं उसको जान से ही खत्म कर दूंगा। बोले ये सब जरूरत नहीं पड़ेगी यार तुमको अभी। बोले क्यों, बोले तुम घर जाओगे ना तो वो नहीं रहेंगी। बोले कैसे, बोले क्योंकि तुमने उसको एजिटी समझ लिया है, तुम जैसी है वो वैसे ही तुमने उसको जान लिया है, वो समझ गई कि आप मेरे चलेगा नहीं इस घर में, आप मैं यहां नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरे को पहचान गए है, और इसीलिए आप तुम्हारे जाने के पहले वो कहां जाएंगे और दोबारा कभी नहीं मिलेगी, समझ गए। कहने का मतलब ये है कि हम उस व्यक्ति को जैसा विषय को, हम विषयों को जैसा है वैसा पहचानते नहीं, इसीलिए वो अच्छा लगते हैं। पांच प्रकार के विषय, जो हम जैसा है वैसा उनको नहीं जानते हैं, विषयों का सही ज्ञान हमको नहीं होता, इसीलिए वो अच्छा लगते हैं और हमको बांध देते हैं। दो ही कारण है भजन छूटने का, बहुत ध्यान से ध्यान में रखना ये पूरे प्रवचन का सारे हमारा, दो ही बात है इसके कारण। एक तो विषयों का सही ज्ञान हमको नहीं होता, और दूसरा जिस मार्ग में हम चल रहे, जिस भक्ति मार्ग में हम चल रहे हैं, उसमें आनंद नहीं आता, उसका अनुभव नहीं होता। यम लब्धा चा परम लाभ मान्यते नादिकम तथा, यम लब्धा चा परम लाभ, ये जो लाभ है, ये जो परम लाभ है वो हमको होता नहीं। कभी कभी तो मैं सुनता हूं कि प्रभु जी 10 साल से हम भजन कर रहे, पहले तो अच्छा लगता था, आनंद भी आता था, लेकिन अब बहुत बोर होता है, मन नहीं लगता है, घर जाने का विचार आ रहे। समझ गए? तो कहने का मतलब इतना ही है, ऐसा होता है कि आनंद बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए, बढ़ते जाना चाहिए, लेकिन ये होता नहीं, कई कारणों से नहीं होता। वो कारण मेरे रूम में आने के बाद मैं बता सकता हूं क्या क्या कारण है उसके है। तो आनंद जो डेली क्रम से बढ़ना चाहिए, जैसे मराठी में कहा है, वर्षा काली सरिता चढ़ूस लागे पंडुस होता, तैसी नीच नवी भजता श्रद्धा दिशे। बरसात के समय जैसे नदी में बाढ़ आती तो बढ़ती जाती, वैसे भक्ति की बाढ़ आनी चाहिए, बढ़ती जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं, घटते जाता है। घटने का क्या कारण है? तो मेरा कहने का मतलब है, ये घटने का कारण जो अनुभव जैसा परमार्थ में आना चाहिए वैसा आता नहीं है, और विषयों का स्वरूप एज इट इज समझ में नहीं आता। अगर हम उनको ठीक से समझ जाएंगे तो चले जाएंगे। देखिए, हमारे घर में गेस्ट आते, उनको आदर करेंगे, जैसे अब मैं इधर आया, आप लोग मेरा आदर किया, मेरे गले में फूल के माला डाली और बोले प्रभु जी आते रहे ना, आते रहिए, आपका स्वागत होते रहेगा, आपका स्वागत है, और खाने पीने को भी माखन मिश्री बढ़िया मिलेगा, और प्रभु जी आप आने से बहुत हमको अच्छा लगता है, तो मैं आने के लिए आदत पड़ जाएंगी मेरी, अरे मेरा वहाँ सत्कार होने लगा है तो आएंगे। लेकिन एकाध बार किसी ने बताया, अरे तुम्हारा प्रवचन तो रखेंगे ही नहीं, कुछ भी नहीं, और तुम कभी आना, आएंगे तो भी मंदिर में मत आना, तो फिर आएंगे, फिर आ नहीं सकते। जिसको जितना आदर देते हैं उसको जितना, मतलब मैं कहा, दुर्गुणों का जितना आदर करेंगे वो हृदय में बैठे रहेंगे, लेकिन वो हमारे शत्रु है, जैसा है वैसा उनको समझो। जैसे वो प्रधानस्य कुलवधूवत, वो समझ गया, घर में गया तो पत्नी घर में नहीं थी, वो दोबारा कभी नहीं देखा उसको, कहा क्योंकि वो उसको समझ गया है कि ये मेरी शत्रु है। वैसे हमारे अजय शत्रु महाभाव काम रूपम दुरासदम, ये जो अजय शत्रु कभी भी इसके ऊपर विजय पाना कठिन है, ऐसे शत्रु दुर्विजय है, उनको जैसे है वैसे समझो, हमारे मित्र मत समझना इनको, और ऐसा समझोगे तो अपने से चले जाएंगे, भाई हमारा सत्कार होने वाला नहीं, हाँ हमको मान सम्मान मिले वो अपने से चले जाएंगे। मैं बोल रहा हूं, उदाहरण तो आपको दिया, लेकिन ट्राई करने से भी जल्दी जाते नहीं तो एक ही ट्राई करना, ज्यादा गोली चलाना उनके ऊपर, पिस्तौल डागना उनके ऊपर, वो है एक ही पिस्तौल, या तो या न्यूक्लियर उनके ऊपर फेंकना, वो एक ही है, हरे कृष्ण हरे राम। ये पहला जो अक्षर है इस श्लोक का, मन का निग्रह सम, उसके ऊपर बोला गया है। सॉरी, पूरा श्लोक में नहीं बता पाया, प्रवचन समाप्त हुआ है। हरे कृष्ण।